पृष्ठ संख्या 55। सत्ताधारियों की अल्पज्ञता और स्थूल दृष्टि का संकेत भी प्रियंगों के माध्यम से दिया गया है। इस प्रदेश के कुछ वातावरण अपने साथ ले जाऊं आदि में यही संकेत हैं। नाटक को आधुनिक संदर्भ देने वाले पात्रों में रंगिणी और अनुस्वार अनुनासिक भी मुख्य है। समसामायिक व्यंग और राकेश का व्यक्तित्व इन सब में साकार हुआ है। समाज का सत्ता संपन्न वर्ग हर उपलब्धि के पीछे असामान्य की कल्पना करता है। ग्राम उनके लिए अजूबा है। इसका चित्र रंगिणी संगिणी में खूब उभरा है। इस प्रदेश ने कालिदास जैसी असाधारण प्रतिभा का जन्म दिया है। यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए, जैसी बात और ग्राम की छोटी छोटी चीजों के प्रति अतिरिक्त उत्साह और उत्सुकता जहाँ उनकी अज्ञानता का सूचक है, वहाँ इस वर्ग की कृत्रिमत्ता संवेदनहीनता का भी। साथ ही आज की उस अध्ययन दृष्टि या शोध वृत्ति पर भी व्यंग्य है जो केवल बाह्य उपकरण एकत्रित करती रह जाती है, आत्मा में प्रवेश नहीं कर पाती, लेकिन मिथ्या दंभ से भरी रहती है। अनुस्वार अनुनासिक नाटक के अनिवार्य अंग हैं और विषयांतर की दृष्टि से नाटक के बोझिल वातावरण को सजीव मनोरंजक बनाने की दृष्टि से उनकी उपस्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है। दोनों राजकर्मचारी एक वर्ग विशेष के संदिग्ध असंदिग्ध औचित्य अनौचित्य के विवाद में उलझे मत वैभिन्न से उपजे दिमागी दिवालियेपन के द्योतक हैं। चलते फिरते ढंग से इनके छोटे छोटे वाक्यों में बड़ी गंभीर बातें कह दी गईं और यह राकेश की अनुभूति और अभिव्यक्ति के अनुशासन पर बड़ा अच्छा उदाहरण है। अर्थ संदर्भ की दृष्टि से भी और नाटकीय परिकल्पना की दृष्टि से भी इस नाटक की सारी पात्र योजना देखकर एक यह सत्य भी सामने आता है कि पहली बार हिंदी नाटक में किसी नाटककार ने छोटे छोटे पात्रों को भी उनका संपूर्ण व्यक्तित्व दिया है। उनकी उपस्थिति नाटक में अनिवार्य और महत्वपूर्ण बना दी है और नाटकीय अर्थ और रंगमंचीय अर्थ गरिमा से उन्हें संयुक्त कर दिया है। ये मंच पर एक रास्ता को तोड़कर विविधता भी लाते हैं। नाटककार की कल्पनाशीलता और सृजन क्षमता को स्थापित भी करते हैं। आधुनिक संदर्भों में गहराई से अभिव्यक्ति भी करते हैं और नाटक की मंचीय संभावनाओं में वृद्धि भी। यहाँ पात्रों का चित्रण कथानक की आवश्यकता और गठन के अनुसार नहीं हुआ है, बल्कि पात्रों से ही कथानक की मांग पूरी हुई है। गठन सशक्त और अर्थ गंभीर। उनका कोई पात्र केवल कथा सूत्र जोड़ने या बढ़ाने के लिए सायास लाया गया प्रतीत नहीं होता। निक्षेप से यह काम लिया गया है, लेकिन आत्मीयता और संवेदनशीलता उसमें भी है। कहीं भी वह निर्जीव या निरर्थक सृष्टि नहीं लगता। हिंदी पाठक को मैं राकेश की यह बड़ी देन मानती हूँ कि उन्होंने कहीं कथानक गढ़ा नहीं है, चरित्र सृष्टि से अभिव्यक्त किया है, स्थूल स्तर पर नहीं सूक्ष्म स्तर पर। इसीलिए उनके नाटकों में उनका अपना व्यक्तित्व दर्शन या चिंतन कहीं भी आरोपित नहीं है। जैसा कि प्रसाद के नाटकों में है, बल्कि उनके नाटकों में उनके पात्र ही जीते हैं अपने अस्तित्व और व्यक्तित्व के साथ। पृष्ठ संख्या 56। कम से कम आषाढ़ का एक दिन नाटक का सारा महत्व उसके विविध पात्रीय होने में, विविध अर्थ संदर्भ देने में है। इस नाटक का बहुपक्षीय महत्व होने में कोई संदेह नहीं है। इसी अर्थ में यह पूर्ण यथार्थवादी नाटक लगता है। नेबीचंद्र जैन जब यह कहते हैं कि नाट्य रूप की दृष्टि से आषाढ़ का एक दिन संगठित यथार्थवादी नाटक है, जिसमें बाह्य व्यवरों की बातों से अधिक परिस्थिति के काव्य को अभिव्यक्त करने का प्रयास है, इस दृष्टि से शायद हिंदी का यह पहला यथार्थवादी नाटक है जो बाह्य और आंतरिक यथार्थ को उनकी समन्वति में, उनके अंतर्द्वंद में देखता और प्रस्तुत करता है, तब निश्चित रूप से वह उसे अन्य हिंदी नाटकों से अलग करते हैं। पहले ही कहा गया है कि अंतर्निहित यथार्थ की खोज राकेश के साहित्य में ज्यादा है। पात्रों के अंतर्द्वंद और विभिन्न संकेतों से ही वह आज के यथार्थ को प्रस्तुत करते हैं। कलागत उपलब्धि की दृष्टि से अषाढ़ का एक दिन बड़ी ही गठी हुई बुनावट का नाटक है। लेखक की एकाग्रता और तीव्रता निरंतर महसूस की जा सकती है। भाव और स्थिति की गहराई में जाने का प्रयास जितना किया गया है, शिल्प की बनावट का उतना नहीं। शिल्प उसके अंदर से स्वभावतः बना और विकसित हुआ है। शिल्प को राकेश ने कभी बहुत महत्व दिया भी नहीं, सहजता ही को, अनुभूति के आवेग की नई और सहज अभिव्यक्ति ही को जो शिल्प मानता हो, उसकी रचना को शास्त्रीय परिभाषाओं के आधार पर परखना नई नाट्य समीक्षा दृष्टि को भुलाना ही होगा। वस्तुतः अषाढ़ का एक दिन नाटक की परिभाषा को फिर से गठित करने का संकट पैदा करता है। इसीलिए वह नया नाटक है। अपने एक निबंध में राकेश ने कहा है कि एक रचना के प्रभाव का क्षेत्र विस्तृत हो, उसके लिए अभिव्यक्ति में एक और गुण अपेक्षित है, और वह है लेखक और पाठक के बीच घनिष्ठता स्थापित करने की योग्यता। कला और जीवन की विभाजन रेखा भुला देने वाले इस लेखक के इस नाटक में अभिव्यक्ति में घनिष्ठता का आग्रह, आत्मीयता और परिचित वातावरण की गंध अवश्य है। नाटक पढ़ जाइए या देख जाइए, कुछ बातें एकदम ध्यान आकर्षित करती हैं। एक, कार्य संयोजन में तीव्रता और गतिशीलता। दो, कार्य व्यापार में पात्रों में विविधता। तीन, नाटकीय स्थितियों का चयन और सार्थक दृश्य श्रव्य बिंब प्रयोग। चार, संवादों की सहज नाटकीय गठन और लय की विविधता। पांच, सांकेतिकता। नाटक के प्रथम दोनों अंक तीव्रता और वैविध्य से युक्त हैं। मल्लिका के प्रवेश के साथ ही अनुकूल नाटकीय वातावरण पैदा होता है। मल्लिका और अंबिका का आपसी टकराव, दृष्टिभेद, फिर कालिदास और दंतुल की बातचीत से पैदा होने वाला तनाव, मातुल की बातचीत, गति, व्यवहार, सबसे उत्पन्न तीव्रता और फिर विलोम का आना, ये सब नाटक को बड़ी तेजी से बढ़ाते भी हैं और बढ़ते हुए तनाव का आभास भी कराते हैं। साथ ही रंगमंच को पूरा जीवन भी देते हैं। संदर्भ: एक, नटरंग 21, मोहन राकेश के नाटक, पृष्ठ संख्या 35। दो, परिवेश अनुभूति से अभिव्यक्ति तक, पृष्ठ संख्या 183।